नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। प्रमुख नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश की प्रगति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की प्रतिभाओं के योगदान की प्रशंसा की। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत। पृथ्वी पर पिछले 20 वर्ष के सबसे शक्तिशाली सौर तूफान से संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड का कामकाज प्रभावित। और भारत के रमित टंडन मिस्र के काहिरा में स्क्वाश विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। राज्य के इस मालवा क्षेत्र में प्रचार चरम पर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज रतलाम और इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा देवास और धार में तथा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में रैली करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, संजय कपूर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बलांगीर में आज एक रैली में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि श्री पटनायक ने खनिज संपदा से संपन्न ओडिशा में 25 वर्षों के शासन के दौरान विकास का काम नहीं किया और लोगों को गरीब बनाए रखा। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार के लिए युवा गुजरात जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं और किसानों को उनके कृषि उत्पादों का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री पटनायक आम लोगों से जुड़े नहीं हैं और उड़िया लोगों का दर्द नहीं समझते। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीन पटनायक सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है।
उड़ीसा का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये किसने किया? ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने कर दिया है। आपने वोट देकर के मोदी को बिठाया, इसके कारण उड़ीसा का गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मोदी तो निमित्त है, देश की हर मां बहन बेटी को इसका गर्व है।
इससे पहले श्री मोदी ने कंधमाल जिले के फुलबनी में एक रैली को संबोधित किया। उनका बारगढ़ में एक और रैली का कार्यक्रम है। कल रात श्री मोदी ने भुवनेश्वर में एक बड़ा रोड शो किया। झारखंड में लोकसभा की 4 सीटों के लिए प्रचार के आज आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सहित अन्य दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम छतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली करेंगे। रैली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी आज पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा आज खूंटी संसदीय क्षेत्र के पमाड़ में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन पलामू में राजद प्रत्याशी ममता भुइयां के पक्ष में जनसभा करेंगी। कांग्रेस व अन्य दलों के वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 4 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों की आज से मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू हो चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में क्षमा कीजिए, आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज अदोनी नगरपालिका मैदान में चुनाव प्रचार करेंगे। वे तिरुपति से एनडीए उम्मीदवार श्री वारा प्रसाद के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। भाजपा, तेलुगुदेशम पार्टी और जनसेना पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकारों ने देश में जनजातीय समुदायों की रक्षा के लिए एससी एसटी उपयोजना, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, पेसा अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम और मनरेगा को लागू किया है। आज उत्तरी महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल नंदुरबार जिले में एक रैली में उन्होंने मणिपुर हिंसा पर एनडीए सरकार के रवैये की आलोचना की। सुश्री प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हाथरस जैसी शर्मनाक घटनाओं और पदक विजेता महिला पहलवानों की मांग पर चुप्पी साधे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राज्य के बेगूसराय के बरौनी में एक रैली कर रहे हैं। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा बेगूसराय के बखरी में रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर एक देश एक नेता के विचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है। श्री केजरीवाल ने कहा कि आईएनडीआई गठबंधन 2024 में केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है और आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। उन्होंने भाजपा पर विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने का आरोप भी लगाया। इधर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब केजरीवाल भी लालू प्रसाद यादव, जयललिता और शिबू सोरेन की तरह जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बन चुके हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की हमारी श्रृंखला में आज चर्चा आंध्र प्रदेश के तिरुपति सीट की। तिरुपति आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी है। यहां लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के बीच है। एक रिपोर्ट।
तिरुपति लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां लगभग 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 40,000 अधिक है। भारतीय जनता पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी और वाईएसआर ने एक एक बार और कांग्रेस पार्टी ने दो बार तिरुपति सीट से जीत हासिल की है। इस बार कुल 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और एनडीए के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने वेलागापल्ली वरप्रसाद राव को मैदान में उतारा है। अपने संगठनात्मक अनुभव के बल पर भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला पेश कर सकती है। निर्वाचन आयोग ने इस क्षेत्र में 2,140 मतदान केंद्र बनाए हैं और आयोग ये प्रयास कर रहा है कि 2021 में हुए उपचुनाव में पड़े 64% वोट में वृद्धि हो सके। साई सिस्तला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
इसी श्रृंखला में आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खंडवा सीट की। यह संसदीय सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। निमाड़ क्षेत्र की यह सीट कई बड़े नेताओं के चुनाव में खड़े होने के कारण चर्चा में रही है।
देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर और शंकराचार्य की ज्ञान भूमि के रूप में मशहूर खंडवा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाख से ज्यादा है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,65,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,35,000 है। खंडवा संसदीय क्षेत्र पर बसपा और निर्दलीय सहित कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल के बीच है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से 7 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस इसका कब्जा है। खंडवा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे, नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण यादव जैसे दिग्गज कर चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
तेलंगाना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अमर्यादित टिप्पणी के लिए प्रदेश कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। श्री रेड्डी ने एक चुनाव सभा में भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। श्री रेड्डी को 48 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं है। कनाडा में अलगाववादी घटनाओं की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि अलगाववाद और हिंसा का खुले तौर पर समर्थन करने वाले चरमपंथी तत्वों को कनाडा की राजनीति में संरक्षण प्राप्त है। एक रिपोर्ट।
एक समाचार एजेंसी से बातचीत में डॉ जयशंकर ने कहा कि कनाडा की राजनीति में ऐसी कुछ चर्चित हस्तियां हैं जो अलगाववाद और चरमपंथियों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को उठाए जाने पर कनाडा सरकार इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे रही है। डॉ जयशंकर ने कहा कि हर देश अपने पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इन दिनों चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य नहीं है क्योंकि सीमा पर शांति में खलल पड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत इस मुद्दे पर चीन के साथ लगातार बात कर रहा है और संबंध को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों को मिलकर इस मुद्दे का समाधान करना होगा। समाचार कक्ष से लवली निगम।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश की प्रगति में विदेशी प्रतिभाओं के योगदान की प्रशंसा की है। सिंगापुर के एक समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम से निकली प्रतिभाएं बड़ी संख्या में सिंगापुर में काम कर रही हैं। श्री लूंग ने यह भी कहा कि सिंगापुर अपने यहां विदेशी प्रतिभाओं की सेवाएं लेना जारी रखेगा। सिंगापुर के शासनाध्यक्ष के तौर पर श्री लूंग का कार्यकाल इस महीने की 15 तारीख को पूरा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि अफगानिस्तान में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। अकेले उत्तरी प्रांत बगलान में ही 62 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों मकानों को नुकसान पहुंचा है। बगलान में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से उत्तर पूर्वी बड़ाक्षड़ प्रांत और मध्यवर्ती गोर प्रांत में भी मूसलाधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। तिश्कान जिले में भी बाढ़ से लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस जिले का सड़क संपर्क टूट गया है। पृथ्वी पर कल रात आए एक असाधारण और शक्तिशाली सौर तूफान से संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड के लिए खतरा पैदा हो गया है। यह तूफान कल तक जारी रहेगा। सौर तूफान के कारण ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक आकाशीय बिजली दिखाई दी। इसे अक्टूबर 2003 के हैलोवीन तूफान के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। इससे कई जगहों पर संचार नेटवर्क, उपग्रह और बिजली घरों का कामकाज प्रभावित हुआ है। अमरीकी मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी भागों तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में सोमवार तक गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने तथा बिहार और झारखंड में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। आज पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में तेज बारिश और मध्यप्रदेश तथा विदर्भ में सोमवार तक बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। मिश्र में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी रमित टंडन ने जीत के साथ शुरुआत की है। विश्व के नंबर 36 खिलाड़ी रमित ने पहले दौर में अमेरिका के फराज खान को पराजित किया। वे इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। रमित का अगला मुकाबला विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी इंग्लैंड के मोहम्मद एल शोरबागी से होगा। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक में दूसरा स्थान हासिल किया है। चोपड़ा ने 88.36 मीटर दूरी तक भाला फेंका और वे सिर्फ 2 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान प्राप्त करने से चूक गए। निशा दहिया पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली 5वीं पहलवान बन गई हैं। तुर्की के इस्तांबुल में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में कल निशा ने 68 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में रोमानिया की अलेक्जेंड्रा एंजल को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में कोलकाता की टीम 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। मुंबई की टीम 8 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। अंक तालिका में चेन्नई 12 अंकों के साथ चौथे और गुजरात 10 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। प्रमुख नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश की प्रगति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की प्रतिभाओं के योगदान की प्रशंसा की। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अचानक आई बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की मौत। पृथ्वी पर पिछले 20 वर्ष के सर्वाधिक शक्तिशाली सौर तूफान से संचार नेटवर्क और बिजली ग्रिड का कामकाज प्रभावित। और भारत के रमित टंडन मिस्र के काहिरा में स्क्वाश विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।